Good morning, all.
Morning.
This past week, I was a little troubled and.
और पिछला सप्ताह जो था जो बहुत ही एक संघर्षों से या समस्याओं में मैं था.
And I was disheartened, disappointed with a lot of things and wanted some encouragement.
और पिछले सप्ताह में बहुत ही मैं निराश था, बहुत ही उदास जैसा था और मुझे एक प्रोत्साहन की जरूरत थी.
There was a verse in the Bible which helped me a lot and gave me encouragement. However, before I go to that, I'd like to share a story.
और एक वचन जो है बाइबल में से मुझे बहुत ही उससे प्रोत्साहन मिला, लेकिन वहां जाने से पहले एक कहानी को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ.
So we have two stories today.
और आज दो स्टोरी हो गई मतलब.
Okay. So this story is about a young boy who used to go to play football with his at his school.
और एक जवान जो एक लड़का था जो अपने स्कूल के अंदर जाकर फुटबॉल खेलता था.
We also have football players here as well.
और हमारे बीच में भी फुटबॉल प्लेयर्स है.
So this boy used to go to practice with his dad.
और उसके पिता के साथ ये लड़का जो था वो प्रैक्टिस करने के लिए जाता था.
So every time he used to go for practice, his father used to accompany him and sit in the football stands in the far.
और जब कभी वो उसके पिता के साथ जाता था वो फुटबॉल खेलने के लिए उस मैदान के अंदर वहां पर वो बैठता था.
So although he used to go to play football, he would never made it to the final 11 of the team.
और यहां तक कि वो फुटबॉल खेलने जाता था लेकिन उसके टीम में जो 11 लोग थे उनके बीच में वो फाइनल तक नहीं जा पाता था.
He was kept in the reserves.
और उसको रिजर्व में रखा जाता था.
So the matches began.
और जब मैच शुरुआत हुआ.
The football matches for the inter school began.
और जब स्कूल के लिए जब फुटबॉल मैच की शुरुआत होती है तभी.
So he never came for the practice.
वो कभी प्रैक्टिस के लिए नहीं आया.
He didn't come up for the semi-final, the quarter-finals or semi-finals.
और semi-final या quarter-final तक वहाँ तक भी वो नहीं आया.
For 4 days had passed and this boy had never come for the matches.
और 4 दिन बीत गए थे ये लड़का जो है वो मैच में कभी भी ये दिखा नहीं कभी.
So on the finals he came and he went to the coach.
और वो final जब भी था वो coach के पास गया.
So and he told the coach that coach please let me play today.
और कोच को जाके बोलता है कि मुझे आज खेलने दो.
Now the coach was saying, told him that, son, I'm sorry, I can't let you play because there are better players in the team than you.
और कोच उसको बताता है कि मैं तुमको नहीं खेलने की अनुमति दे सकता क्योंकि आपसे भी बेहतर खिलाड़ी जो है इस टीम के अंदर है.
Yeah. So, but the boy pleaded. He said, "Coach, you've always let me play in the reserves. Please, it's very important for me. Please let me play."
लेकिन वो बहुत ही बिनती करता है उस कोच से कि मैं हमेशा रिजर्व में ही रहा हूँ. मुझे प्लीज एक मौका दीजिए मुझे इस टीम के अंदर खेलने के लिए.
I will not let you down.
और मैं आपको निराश नहीं करूँगा.
So, the coach had never seen the child, the boy plead like this before.
और कोच ने कभी भी इस बच्चे को इस प्रकार बिनती करते हुए कभी नहीं देखा था.
So he said, "Okay, you can go and play, but remember."
और कोच उसको बोलता है कि ठीक है आप जाकर खेल सकते हो लेकिन याद रखो.
I am going against my better judgment.
लेकिन वो कहता है कि जो मेरा जो न्याय करने का जो तरीका है जो अच्छा है उससे मैं विपरीत जा रहा हूँ.
And the school's reputation is at stake. Please don't let me down.
और जो 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 स्कूल का जो रेपुटेशन या नाम है वो यहाँ पर लगा हुआ है तो उसको नीचे मत करना.
So the matches there was a final match and they started to play.
और फाइनल मैच शुरुआत होता है और वो खेलना स्टार्ट करते हैं.
And this boy played with such a zeal, he played like a house on fire.
और इतने बहुत ही उत्साह के साथ पूरे एक आग इसने इतनी अच्छी तरह से उसने वहां पर खेला इस लड़के ने.
You know, needless to say that every time he got the ball, he shot a goal.
और यहां तक कि जब कभी उसके पास बॉल आता है वो एक गोल को वहां पर मारता ही है.
So I mean his team won.
और उसके बाद उसकी टीम जो है जीत जाती है.
The finals.
फाइनल्स में जीत जाती है.
Everyone was very happy.
सब बहुत ही खुश है वहां पर.
And after the match, the coach went to him and said.
और उसके बाद मैच के बाद कोच उसके पास वो लड़के के पास जाकर कहता है.
Son, how could I be so wrong in my life?
और वो कहता है कि बेटा मैं मेरे जीवन के अंदर कैसे इतना गलत हो सकता हूँ.
I have never seen you play like this before.
और मैंने कभी भी इस तरह से तुम्हें खेलते हुए कभी नहीं देखा है.
So the boy replied, "Coach, there's something I have never told you about."
और वो लड़का जो कोच को उत्तर देता है कि कोच मैंने आपको पहले कभी इस चीज को नहीं बताया जो आज बताता हूँ.
And he said, "It's about my father."
और वो कहते हैं कि मेरे पिता के बारे में बताना चाहता हूँ.
सो ही सेड या आई नो योर फादर यूज्ड टू अकॉम्पनी यू व्हेनेवर यूज्ड टू कम फॉर प्रैक्टिस.
और वो कोच उसको बोलता है कि हाँ मुझे याद है कि जब भी तू प्रैक्टिस के लिए आता था तेरा पिता जो है वो तेरे साथ में आता था वहाँ पे.
एंड ही टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड एट द प्लेस वेयर हिज फादर यूज्ड टू सिट बट डिडंट सी हिम टुडे.
और वो वहां पर दिखाता है कि वो तेरे पिता वहां पर बैठते थे और आज मैंने उनको नहीं देखा तेरे पिता को.
सो द बॉय रिप्लाइड कोच माय फादर डाइड 4 days ago. He was blind.
और वो कोच को इस तरह से उत्तर देता है कि मेरा पिता जो 4 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई वो अंधा था.
Today is the first day he's watching me from above.
और आज वो पहला दिन है जो ऊपर से वो मुझे देख पा रहा है.
So we can see how you know love can be a motivation to do something which is like he's never done it before.
और आप सोच सकते हैं कि प्रेम जो है एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है कि जो चीज हमने पहले नहीं की उसे को करने के लिए हमें इतना प्रेरित कर सकता है.
So let's turn to the it's a very familiar verse for all of us.
और बहुत ही जो हम जानकार वचन उसकी और हम जाएंगे.
It's 1 Corinthians chapter 13 verse 4 onwards.
और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन से आगे.
Love is patient, love is kind. It does not envy, does not boast. It is not proud, it is not rude, it is not self-seeking. It is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Love never fails.
और 4 वचन से आगे, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है. प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं. वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है. वह सब में सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता और प्रेम कभी टलता नहीं.
इट इज ईजी टू स्पीक अबाउट इट और रीड अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड इट इन आवर हेड्स when everything is going right in our lives.
और जब सारी चीजें बहुत ही अच्छी चल रही है इस चीज को पढ़ना समझना या इस चीज को मनन करना बहुत ही आसान है.
However, when it's very difficult to live it out.
लेकिन बहुत ही परंतु इसको जीना बहुत ही कठिन है.
Especially when you love people and you don't even get a drop of love in return.
और यहाँ तक कि जब आप लोगों से बहुत ही प्रेम करते हैं बहुत ही ज्यादा लेकिन बदले में आपको एक बूंद भी प्रेम आपको बदले में नहीं मिलता है.
And you get discouraged.
और आप निराश हो जाते हैं.
So over and over, you know, we have to remember that, you know, this verse used to encourage me that, you know, no matter what, love is patient. So to continue patiently, you know, to love in spite of how the situation turns out.
और यहाँ तक इस वचन ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया कि प्रेम धीरजवंत है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति और हालात के बदले भी मैं धीरज के साथ वहां पर रह सकता हूँ.
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करें.
It was encouraging to hear what Lenny shared.
और बहुत ही प्रोत्साहन भरा था जो हमने अभी सुना.
Something God has been teaching me is to be devoted to Him.
और जो परमेश्वर इन दिनों में मुझे सिखा रहा है वो है कि परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने के बारे में.
In 2 Corinthians 11,
दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय,
verse 2 and 3,
उसका दूसरा और तीसरा वचन,
says, "For I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin." Verse 3, but I am afraid that as a serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ.
और क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नई मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कोई कहीं भ्रष्ट न की जाए.
Paul says here in verse 2, Paul is telling the Corinthians, "I betrothed you to just one husband."
और यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की मंडली से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष के साथ लगाई है.
And that is Jesus Christ.
और वो यीशु मसीह है.
And that speaks to me so much.
और ये इतना सब कुछ मुझसे बात करता है ये वचन.
I am betrothed to just one husband, that is Jesus Christ. My full heart I have to give to Jesus Christ.
और मेरी जो बात है वो जो दुल्हा यीशु मसीह उसके साथ लगाई गई है तो मेरा पूर्ण हृदय जो है वो उसके साथ यीशु मसीह के साथ लगा होना चाहिए.
No, I'm not married over here.
और मैं विवाहित नहीं हूँ.
But I think the married people will understand this, that you know they betrothed to just one wife and one husband.
और जैसे मैं यहाँ पे विवाहित नहीं, लेकिन विवाहित लोग इसे समझ सकते हैं कि एक ही पुरुष जो आपकी पति है या आपकी पत्नी, उसी के साथ आप बने रहे हो समर्पित.
And they'll want to give the one heart to you know both of them, their husband or their wife.
और जो पति पत्नी है वो पूरा पूर्ण हृदय जो अपना है वो एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित करके दे देते हैं.
So that's what God was speaking to me, that this one heart I have to give it all to Christ.
और वही यहाँ पर कह रहा है पॉलुस के, एक जो हृदय मेरे पास है संपूर्ण रीति से मुझे परमेश्वर को देना है.
And in verse 3 Paul's afraid that something might happen.
और यहाँ पर पॉलुस और भी तीसरे वचन में कहता है कि मैं डरता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए.
That the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ.
और कहता है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से मसीह के साथ जो होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए.
Just look at what the devil is interested in distracting you with.
और ध्यान से यहाँ पे देखें कि शैतान किस चीज में रुचि रखता है कि आपको उससे पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करें.
He's not interested in distracting you from coming here every Sunday or reading your Bible daily.
और शैतान आपको इससे नहीं रोकेगा कि आप प्रतिदिन अपना वचन पढ़े और आप सभा में यहाँ पर आए, उससे आपको नहीं विचलित
करेगा. Doing a lot of activities in church.
और कलीसिया के अंदर बहुत सारी जो कार्य जो काम करना है वो करते रहे यार उसको.
The devil is interested in you know leading your mind astray from the simplicity and devotion to Christ.
लेकिन यहाँ पर जैसे कहता है कि अपनी जो मन की सिधाई जो और पवित्रता उससे वो हमको बहका कर दूर कर देगा.
You know that simple love for Jesus, that Lord, I love you with all my heart.
और एक बहुत ही साधारण प्रेम परमेश्वर के प्रति कि प्रभु मेरे पूरे हृदय से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ.
You know in Mark 12,
मरकुस 12 अध्याय,
one of the scribes questioned Jesus, which is the greatest commandment.
और वहाँ पर एक वचन का जो शास्त्री होता है वो यीशु के पास आकर कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है.
Mark 12, verse 30.
उसका 30 वचन.
In 28, the scribe came and asked Jesus, "What commandment is the foremost of all?" And in verse 30, Jesus replied, "And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength."
और यहाँ पर मरकुस 12:28 में कुछ शास्त्री उसे आकर कुछ प्रश्न पूछते कि सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है. 30 वचन में यीशु कहता है कि तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना.
You have to really remember the importance of one word over there.
और यहाँ पे एक जो शब्द है उसको खास ध्यान देने की जरूरत है.
That is all.
और जहाँ पे लिखा है कि सारा.
It does not say you shall love the Lord your God with some of your heart and some of your mind and some of your soul and some of your strength.
और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि हमारा कुछ मन है कुछ या थोड़ा सा अपना प्राण लेके या थोड़ा सा बुद्धि लेके अपनी थोड़ी सी शक्ति से हम परमेश्वर को प्रेम रखें.
It says with all, with everything.
और संपूर्ण मतलब हर चीज के साथ.
I was really blessed when I was reading the article about why God used D.L. Moody.
और जैसे कि आर्टिकल में पढ़ रहा था क्यों परमेश्वर ने D.L. Moody को इस्तेमाल किया, बहुत ही मुझे आशीष मिला उसको पढ़ते समय.
You know the first point.
पहला जो पॉइंट उसमें लिखा है.
Anybody remembers what is it?
किसी को याद है वो क्या था?
What brother Tore had wrote.
और जो भाई टोरे ने उसको लिखा है.
The first point why God used D.L. Moody is he was a fully surrendered man.
और पहला जो पॉइंट वहां लिखा है कि क्यों परमेश्वर ने D.L. Moody को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो पूर्ण समर्पित परमेश्वर के प्रति था.
And in that para there was a sentence that said that complete 200 pounds of body was surrendered to Jesus Christ.
और वहां पे लिखा है कि उसका जो पूरा जो 200 पाउंड का जो पूरा बॉडी जो शरीर है पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित था.
That's why God used him.
और इसकी वजह से परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सका.
Because he gave all his heart and soul and body to Christ Jesus.
और इस कारण उसने अपनी आत्मा प्राण जो शरीर है पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित किया था.
And it's written that he was not perfect. He had lot of you know faults in him.
और यहाँ वहाँ लिखा था कि वो सिद्ध नहीं था, बहुत सारी कमजोरियाँ उसके जीवन के अंदर ऐसी बातें थी.
But still, he surrendered everything to Jesus Christ.
लेकिन यहाँ तक उसने अपना सब कुछ यीशु मसीह को समर्पित किया.
Another verse which blessed me was from John 14.
और यूहन्ना 14,
verse 15. We know this verse very well.
और इस वचन को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं.
It says, if you love me, you will keep my commandments.
और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे.
Jesus speaking to his disciples here.
और यीशु मसीह अपने शिष्यों से यहाँ पे बातें करता है.
And there's a motive here, there's a condition.
और यहाँ पर एक उसका परमेश्वर का एक उद्देश्य है जिसके ये जो बातें कर रहा है उसके पीछे.
Jesus says, if you love me, you will keep my commandments.
और यहाँ पे वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे.
That shows that if we love Jesus, we will obey him.
और ये आश्वासन वो देता है कि यदि हम उससे सच में प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को हम पालन कर सकेंगे.
Another verse I was blessed with was from 1 John.
पहला यूहन्ना. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय.
1 John 2 verse 6.
उसका छह वचन.
The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked.
So जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था.
So in the Living Bible it's translated very well. It says whoever calls himself a Christian should live as Jesus Christ lived.
और लिविंग अनुवाद के अंदर लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है वो जैसे वो था वैसे ही हम चले.
That came really strongly to me.
और बहुत ही मजबूत और बहुत ही सामर्थ्य रूप से इसने मुझको छुआ.
That question, are you a Christian?
और ये प्रश्न कि क्या मैं मसीह हूँ?
How many of us over here call ourselves as Christians?
और कितने यहाँ पर है जो अपने आप को ऐसा समझते कि हम मसीही हैं?
And are we living as according to what Jesus Christ lived?
और क्या हम सच में अगर मसीह कहते हैं अपने आप को लेकिन मसीह जैसा यीशु जिया है कैसे वैसा हम रहते हैं या नहीं?
That really spoke to me. Even though I have so many struggles in my life.
और यहाँ तक कि हो सकता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष हो सकते हैं.
Am I living according to God's will?
लेकिन क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूँ?
You know the verse of the week says, take my yoke upon you.
और जैसे हमने जो word of the week में देखा कि मेरा जो जुआ अपने ऊपर उठा लो.
You know Christ is the experienced one.
और यीशु मसीह जिसके पास बहुत ही अनुभवी वो है.
He's gone. You know it says in Romans, I think Hebrews chapter 2, that he has gone through everything we are going through.
और वो बहुत ही अनुभवी यीशु इब्रानियों में जैसे कहता है कि जो कुछ हम आज गुजर रहे हैं वो सब कुछ उसमें से गुजर चुका है.
He has faced all sorts of temptations. Like, whatever you talk about it.
और आप किसी भी चीज की बात करें हर परीक्षण का सामना यीशु मसीह ने किया है.
Whether it's pressures in your job or you're facing, you know, lustful thoughts or whatever deepful sin, he has gone through that temptation.
और हो सकता है कि ऑफिस के अंदर एक दबाव का सामना कर रहे हैं या बहुत ही व्यभिचार से भरे विचार या कोई भी गहराई से भरा कोई भी पाप या समस्या उन सब का सामना यीशु मसीह ने किया है.
बट जीसस इज द वन हू सेज टेक माय योक.
लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो.
योक इज दैट थिंग व्हिच यू कपल ऑन अ बुलक कार्ट.
और ये जो जुआ जो है वो जो बैल जो होता है उसके ऊपर लगाया जाता है.
एंड इट्स ऑलवेज डन विद वन एक्सपीरियंस बुल एंड अनदर अ वीक नॉट एक्सपीरियंस बुल.
और ऐसा होता है कि एक जो अनुभवी जो बैल होता है उसके ऊपर एक लगाया जाता है और दूसरा जो कम अनुभवी होता है उसके ऊपर दूसरा वो लगाया जाता है.
जीसस इज टेलिंग द सेम थिंग, आई विल वॉक विद यू.
और यीशु मसीह वही कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा.
There are so many, the devil is trying to distract you from so many things.
और शैतान जो हमें बहुत सारी चीजों से हमारे ध्यान को भंग करता है.
But God is there. He's helping. He's telling us he'll walk with us.
लेकिन ये परमेश्वर वहाँ पर है. वो यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा.
You know, another thing what blessed me was, you know, God telling me that the devil is a liar.
और एक चीज और जो परमेश्वर मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि शैतान जो है वो झूठा है.
The devil will always lie to you.
और शैतान आकर हमेशा आपसे झूठ ही बोलेगा.
He will discourage you from so many things.
आपको बहुत सारी चीजों के द्वारा निराश करेगा.
He will tell you you sin. Now, you know, he'll put you down.
वो कहेगा अभी तूने पाप किया है अब वो तुझे नीचे करेगा.
But God is never like that.
और परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं है.
He will always lift you up.
वो हमेशा आपको ऊपर उठाएगा.
And he will always take that yoke and walk with you.
और वो हमेशा उस जुए को साथ आपके पकड़कर आपके साथ साथ चलेगा.
And another thing was, you know, to recognize that I am nothing.
और दूसरी चीज जो है उस चीज को एहसास करना मान लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ.
I was watching a movie the other day.
एक मूवी को मैं एक दिन देख रहा था.
I think the kids will relate to this.
और जैसे बच्चे उसको याद कर सकते हैं.
The movie was about a rat and a man. It was Ratatouille.
और वहाँ पे जो एक इंसान है और एक चूहा है उसकी कहानी वो थी.
You know the story of Ratatouille, right? Kids,
बच्चों को पता है ये कहानी?
I think they know about it. So that boy who, you know, that boy, he didn't know how to cook.
और वो लड़का जो है उसको पता नहीं कि कैसे खाना बनाते हैं.
He didn't know how to do anything.
उसको कुछ भी नहीं पता कि काम कैसे करते हैं.
And he was recognized as the main cook in that restaurant.
और उस restaurant के अंदर उसको खास एक बहुत ही अच्छा cook जो बनाने वाला है, खाना बनाने वाला के नाम से जाना जाता था.
And the main cook was that rat who used to sit on his head and control him.
और वो जो main जो cook था, वो लड़का नहीं था, लेकिन उसके सर के ऊपर वो चूहा जो था, जो टोपी पहन के बैठता था, वो उसको बताता था कैसे करना है.
And he used to hide from everything that guy used to put the rat inside and cover it with a hat.
और वो जो लड़का जो था, वो जो उसकी टोपी लंबी होती थी, उसके अंदर उसको कवर कर देता था उस चूहे को.
So that guy, he said, I am nothing. It's not me. I can't cook.
और वो लड़का फिर आगे जाके बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं आता, मैं बनाना नहीं जानता हूँ.
But that rat sitting up, he knows everything. He can control everything and knows what ingredients to put where, and he can make a delicious dish.
और लेकिन जो उसकी जो टोपी है, उसके अंदर जो चूहा बैठा है, उसको सब कुछ पता है. वो सब चीजों को अच्छी तरह से जानता है कि कौन से मसाला है, किस तरह से कितना क्या डालना है.
So that was spoke to me that, you know, give God control, let him control you.
और वही परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर को पूरा नियंत्रण दे, वो हमारे मेरे जीवन को नियंत्रण पूरी तरह से करे.
He is the experienced one, let him take over.
और वो ही है, पूरी तरह से अनुभवी है, वो मेरे जीवन को चलाए.
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करे. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए. और पिछले दिनों में बहुत सारी ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें चल रही थी, बहुत ही संघर्ष या बहुत ही स्ट्रेस से मैं गुजर रहा था. कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हो रही थी और मैं भी उस स्ट्रेस में से गुजर रहा था. बहुत ही जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, काम का जो डेडलाइन थी वो हो नहीं पा रहा था. तो बहुत ही ज़्यादा जैसे एक निराशा जैसा कि अपना संपूर्ण काम, पूरा काम करने के बाद भी चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, और उसके वजह से बहुत ही नेगेटिव कमेंट या बॉस इज़ नॉट हैप्पी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. और उन दिनों में आपको पता होगा कि चंद्रयान वाला जो विक्रम, ये सब कुछ न्यूज़ में बहुत ही चल रहा था. वो टाइम पे मेरा भी स्ट्रेस बहुत ही चल रहा था ऑफिस में. एंड देन मैं फिर उस चीज़ से प्रभु ने शायद मुझसे बहुत ही क्लियरली बात की कि परमेश्वर कितना बुद्धिमान और चतुर है. कि मतलब लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि मैं कितना चतुर या बुद्धिमान हूँ या अपना ज्ञान दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी जो सृष्टि को छूने तक, वहाँ तक उनके ज्ञान को पूरी तरह से, यू नो, प्रभु ने, या मुझे लगता है वहां पर और कोई मनुष्य नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का हाथ जरूर वहां पर उस चंद्रमा या उसकी सृष्टि के अंदर होगा. वहां तक आया और वहां तक शायद मनुष्य का ज्ञान पूरी तरह से व्यर्थ हो गया. और वो दिखाता है, जैसे हमने इस गीत को भी गाया कि परमेश्वर बिगर देन एनीथिंग दैट वी गो थ्रू. और परमेश्वर ने उससे बात की कि एक बार मैं बहुत मेरी समस्या को ही देखता हूं कि कैसे ये होगा सॉल्व, किस तरह से होगा, कौन मेरी मदद करेगा, मैं कैसे इसमें से निकलूंगा. लेकिन परमेश्वर की महानता को देखना बहुत जरूरी है कि उसने क्या बनाया, उसकी महान सृष्टि दिखाता है कि सच में वो परमेश्वर. कई बार मैं सोचता हूं कि मैं कई बार अपनी निर्बलता में ही परमेश्वर को देखता हूं. कि मैंने एक बार एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक आदमी जहां से रस्ते से गुजरता है और वहां पर एक घोड़ा घास खा रहा होता है. घोड़ा घास खा रहा है, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है. घोड़ा घास तो खा रहा है, लेकिन वो घोड़ा जो है वो चश्मा पहन के घास खा रहा है. तो उसको किसी ने पूछा कि ये बहुत ही पहली बार देखा हुआ है, तो क्यों ये घोड़ा घास, इसको घोड़े को चश्मा पहना है. तो उसके मालिक ने बोला, बहुत ही सिंपल है कि ये जो घोड़ा जो है वो सूखा हुआ घास नहीं खाता है. उसको हरा चश्मा जब पहना देते हैं तो ये सूखे घास को हरा समझ कर अच्छे से खाने लगता है. और ये है कि एक पर्सपेक्टिव जो उसका चेंज हो जाता है कि वो खा रहा सूखा घास है, लेकिन उसको पहनाया गया कुछ और है तो उसको आसानी से खा रहा है. नो, समटाइम्स मुझे लगता है कि प्रभु मेरे पास वो स्वर्गीय पर्सपेक्टिव नहीं है प्रभु, परिस्थितियों को देखने का. जब मैं परिस्थिति ऑफिस में जब बहुत ही टेंस हो जाती है, स्ट्रेस आने लगता है, तो मैं सोचता हूं कि मैं अपने चश्मे से ही देखता हूं और बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता हूं, कैसे होगा. बट मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे तेरा वो बड़ा वो चाहिए कि प्रभु चंद्रयान, बड़े बड़े यान को प्रभु तू वहां तक पहुंचने नहीं देता. मतलब उसका हाथ कितना सामर्थ्य कि ऐसी महान सृष्टि सालों से लोग रिकॉर्ड बनाने में लगे कि उसको छुए हम, और परमेश्वर ने एक दिन में, चौथे दिन में ही उसने बड़ा ग्रहों को और ब्रह्मांड को बना दिया. उसने वो गीत बहुत ही मुझे प्रोत्साहित किया कि यू नो, बिगर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन, वो परमेश्वर है. और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी महानता को देख, अय्यूब उसका 9 अध्याय, अय्यूब जोब चैप्टर 9, सॉरी, उसका 4 वचन से आगे. कुछ वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं जो सच में परमेश्वर की महानता को दिखाता है। वो लिखता है कि वो बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वो तो पर्वतों को अचानक हटा देता और उन्हें पता भी नहीं लगता। वो क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता। वो पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थानों से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय नहीं होता और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेले ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता। वह सप्तश्री मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला, वह तो ऐसे बड़े कामों को करता है जिनकी समझ नहीं लग पाती और इतने आश्चर्य कर्मों को करता है जो गिने नहीं जा सकते। और इस वचन से दिखता है कि परमेश्वर सच में इतना महान और इतना बड़ा है कि हम जो गुजरते हैं उससे वो बड़ा है। और इस चीज़ का एक रवैया मुझे लाना बहुत ज़रूरी है। और एक वचन को मैं जिससे मुझे लास्ट वीक में बहुत ही प्रोत्साहन मिला, पहला कुरंथियों उसका पहला अध्याय उसका 19 वचन, पहला कुरंथियों उसका पहला अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मतलब अगर परमेश्वर दिखाना चाहते कि मनुष्य जिस चीज पर घमंड करता है, जिस ज्ञान और बुद्धि पर, वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। और मैं अपने आप को देख रहा था कि प्रभु मैं तेरे ज्ञान और तेरी बुद्धि और महानता को कई बार बहुत ही सीमित कर देता हूं, क्योंकि मैं अपने ही चश्मे से परिस्थिति को देखता हूं, परमेश्वर को भी देखता हूं। मैं जितना कर सकता हूं उतना ही परमेश्वर कर सकता है, शायद थोड़ा सा ज्यादा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर बहुत ही सच में असीमित है। और वहां पर मैंने देखा कि जब ये ऑफिस के अंदर बहुत ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, काम नहीं हो रहे थे, बहुत ही हार्डवर्क डालने के बाद भी बॉस खुश नहीं था, तो मुझे यहां पर याद आया कि मैं बहुत ही अपने रेस्ट को खो रहा था, कि मैं बहुत ही उसको जल्दी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट में टाइम से स्टार्ट नहीं कर पाया और मुझे बहुत सुनना पड़ा क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं कर रहे थे। ये सारी चीजों के अंदर फिर परमेश्वर ने, जैसे दो सप्ताह पहले यहाँ पे रविवार को बांटा गया था कि सारी चीजें हमारे जीवन में जो दी गई परमेश्वर के द्वारा खुले हुए हाथ में रखनी बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर ने देखा है कि कुछ चीजें मैं अभी भी मुट्ठी में बांधे हुए हूं और वो है शायद मेरा अच्छे काम करने का तरीका, या मैं लोगों की नजर में मैं जो ठीक कर रहा हूं वो अच्छे से समयसर हो, लेकिन कई बार अच्छा अपना काम करने के बाद भी वो समय से अगर नहीं होता है, चीजें बिगड़ जाती है, फिर भी खुले हुए हाथ के समान होना चाहिए। वो मेरा जो रेस्ट है वो उससे खाली नहीं होना चाहिए। सो इस चीज को मैंने सीखा कि प्रभु यहां तक मैं मेरा सब कुछ कर रहा हूं विश्वास करते हुए, तू मेरे साथ में, मुझे अनुग्रह दे कि प्रभु उन सारे नाम को जो मैं पकड़ के हुए बैठा हूं ऑफिस में, या अच्छे ऑफिस बॉस के सामने अच्छा नाम, या दूसरे डिपार्टमेंट की, इट इज फाइन लॉर्ड, अगर तू अलाउ करता है काम करने के बाद भी अगर वो बदनामी हो रही है, दे आर नॉट हैप्पी, एंग्री हो रहे हैं प्रभु, बट आई शुड नॉट लूज माई रेस्ट। वहां पर और एक वचन वहां लिखा है 24 वचन में, पहला कुरंथियों 1 उसका 24, परंतु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मैं सोच रहा था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ज्ञान और क्या क्या वो लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बड़े बड़े वो लोग बातें करते हैं, लेकिन एक मसीह हम और आपके लिए सबसे बड़ी चीज मेरे लिए कौन सी है, वो लिखा है जो बुलाए हुए लोग हैं उनके लिए मसीह जो है परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का। तो मेरे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ही वो ज्ञान का सोता, वो बुद्धि का सोता, मेरी जरूरत, मेरे लिए वो सब कुछ, मेरे लिए वो खड़ा है। मतलब यीशु मसीह को क्या मैंने उस तरह से प्राप्त किया है कि जैसे ये वचन कहता है कि प्रभु तू मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और 25 वचन में लिखा, 26 वचन में, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान बहुत सामर्थ्य न बहुत कुलीन बुलाए गए, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मैं सोच रहा था कि प्रभु इस बुलाहट को, इस चुने जाने को, इस उद्धार को कितने हल्के से प्रभु कई बार मैं लेता हूं कि प्रभु तूने ज्ञानवानों को बड़े बड़े नहीं चुना, लेकिन मुझ जैसे तुच्छ और जो कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों को आपने तूने चुना प्रभु, और मैं निर्बलता में प्रभु तूने अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया है। और कई बार मैं अपने संघर्ष को देखता हूं कि प्रभु मेरे संघर्षों में, प्रभु मेरे पाप के साथ जो संघर्ष है प्रभु, या जिन चीजों के ऊपर मैं प्रभु संघर्ष कर रहा हूं विजय पाने के लिए प्रभु, उन सारी चीजों के ऊपर मैं कैसे जय प्राप्त सकता हूं प्रभु, मुझ में वो सामर्थ नहीं है बिल्कुल। इस वचन ने मुझसे बहुत ही अद्भुत रीति से बात किया। 30 वचन में लिखा है, 29 वचन में, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। स्वचन से बहुत ही कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। लिविंग बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है 30, इट सेज दैट गॉड हैज यूनाइटेड यू विद क्राइस्ट जीसस फॉर आवर बेनिफिट। गॉड मेड हिम टू बी विजडम इटसेल्फ। क्राइस्ट मेड अस राइट विद गॉड, ही मेड अस प्योर एंड होली एंड ही फ्रीड अस फ्रॉम ऑल सिन। तो इस वचन से मुझे बहुत की यू नो, अगर उस पाप से उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है, तो यीशु मसीह मेरे लिए उपलब्ध है। और वहां पे लिखा है यीशु की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। बहुत अपने विल पावर से या अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से मैं उस पाप के ऊपर विजय पाने की अगर कोशिश करता हूँ, जवानी के पापों के ऊपर मैं नहीं कर सकता, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ही, वो मसीह जो है वो सामर्थ है, वो ज्ञान है, वो भंडार है जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। और अंत में इस चीज़ को समझने के लिए जहाँ लिखा है कि यीशु मसीह में, इस चीज़ को समझने के लिए एक उदाहरण मैंने सुना था जो मुझे बहुत ही हमेशा याद आता है, जहाँ लिखा है कि एक मर्सिडीज जो कार है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही उसका पावरफुल अगर इंजन है, वो बनाई गई है रोड पे चलने के लिए। उसका इंजन इतना पावरफुल है कि सबसे तेज शायद 200-300 स्पीड के ऊपर वो जा सकता है, लेकिन वो जमीन के ऊपर चलने के लिए बनाया गया है। और वो अपनी पूरी सामर्थ, अपना इंजन का पावर यूज करके भी उड़ नहीं सकता है। कितनी भी उसके अंदर विल पावर हो, कुछ भी हो, वो उड़ नहीं सकता है। वहां पर वो पूरी तरह से असमर्थ है। अगर उसको उड़ना हो तो वो उड़ नहीं पाएगा, कितना भी वो ताकत अपनी लगा ले नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर उसको उड़ना है, एक कार्गो एरोप्लेन के अंदर उस मर्सिडीज को अगर पार्क कर दिया जाए तो उसकी सामर्थ्य, उसकी एबिलिटी उसको मिल जाती है और वो फ्लाई कर सकती है। और यही मैं देखता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को कितने भी प्रभु अपने सामर्थ्य से पाप पर विजय पाने की कोशिश करूँ कि प्रभु मैं नहीं उठ सकता उस मर्सिडीज कार में, अपनी योग्यता, अपने अनुभव मैं प्रभु कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा है इन क्राइस्ट, पौलुस बार बार कहता है कि मसीह यीशु में, मसीह यीशु में हम जयवन से बढ़कर है, मसीह यीशु में सब कुछ उसने हमारे लिए पूरा किया है। जब हम अपने आप की सामर्थ को बंद करके मसीह की सामर्थ के ऊपर, जैसे उस कार्गो प्लेन में उसको अपने बल के ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उस प्लेन की योग्यता पर वो उड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि प्रभु अपने जीवन के अंदर जब मैं चिंता से जाता हूं या स्ट्रेस से गुजरता हूं, प्रभु मैं अपने इंजिन को, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को बंद करके पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहता हूं और उसके रेस्ट को हमेशा मैं एंजॉय करना चाहता हूं। आमीन।
या प्रेज गॉड फॉर द वर्ड व्हिच वी हर्ड। द लास्ट वीक, सॉरी, इन दिस वीक वेडनेसडे,
और ये सप्ताह बुधवार के दिन
वी वर शेयरिंग इन द वीकली मीटिंग द सेम थिंग व्हिच यू नो ब्रदर जॉनी शेयर्ड,
और बताया भाई जॉनी ने जैसे बताया वो ही वीकली मीटिंग में शेयर किया जा रहा था।
एंड थ्रू आउट द वीक, नॉट थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द आई मीन मेनी 2-3 weeks आई वाज मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड व्हिच इज अनडिवाइडेड हार्ट।
और जो पिछले 2-3 सप्ताह से मैं उस वचन के लिए, परमेश्वर के लिए बाट जो रहा था,
सो गॉड टॉट मी फ्यू थिंग्स Which really, you know, bless me.
परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे सिखाया जिससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला।
चर्च इज समथिंग विच यू नो वी मेक चर्च, यू नो वी इंडिविजुअल मेक द चर्च। चर्च इज नॉट समथिंग लाइक यू नो द पीपल हु कम्स एंड सिट एंड गो।
और कलीसिया जो है, जो मनुष्य है, हम लोग साथ में बनाते हैं।
इट इज इंडिविजुअल लाइफ, हाउ माई रिलेशनशिप विद गॉड एंड वेन आई कम इन द चर्च विद अदर पीपल एंड वर्कशिप, that's you know that worship God will accept.
और जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ होता है, संगति परमेश्वर के, फिर कलीसिया में आके एक दूसरे के साथ संगति करता हूं, इस प्रकार ये काम करता है।
How my heart is loyal to the Lord, which is you know it should be single hearted undivided heart,
और पूरी तरह से बिना भंग किया गया परमेश्वर के प्रति समर्पित मेरा जो हृदय होना चाहिए।
Before building this temple, I want to build my temple. That is my spiritual life, my body.
और ये बाहरी जो मंदिर है उसको बनाने से पहले जो मेरा भीतर का जो मंदिर, जो मेरा शरीर है, उसको मैं बनाना चाहता हूँ।
And that is, you know, first thing, you know, before coming the church, I believe.
और कलीसिया में आने से पहले मुझे उसको बनाना है।
In 1 Chronicles,
पहला इतिहास, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय।
These two chapters, you know, in last chapter 28 and 29, I was reading and meditating.
और 28 और 29 जो अध्याय जिसको मैं मनन कर रहा था,
दिस आर द लास्ट वर्ड्स डेविड टोल्ड टू सोलोमन,
और ये अंतिम शब्द है जो दाऊद ने सुलेमान को कहा।
बिफोर बिल्डिंग द टेंपल,
और उस मंदिर को बनाने से पहले,
चैप्टर 28
28 वचन, 28 अध्याय,
verse 9. It's for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with a loyal heart. You can say an undivided heart. And with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. If you seek him, he will be found by you. If you forsake him, he will cast you off forever. Consider now, for the Lord had chosen you to build a house for the sanctuary. Be strong and do it.
और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा।
दिस डेविड टोल्ड बिफोर यू नो बिल्डिंग द टेम्पल,
और ये दाऊद ने सुलेमान को मंदिर बनाने से पहले कहा।
He gave instruction as a command that before building a temple your life should be like this only.
और उसने एक निर्देश एक आज्ञा के रूप में सुलेमान से कहा कि उस मंदिर को बनाने से पहले तेरा जीवन जो है इस वचन में जो बातें लिखी उस प्रकार होना चाहिए।
And 11 you can read, he gave the blueprint of the temple, the Holy Spirit which told to David.
और फिर 11 वचन में हम देखते हैं कि वहां पर एक नक्शा उसको दिया कि किस प्रकार चीजें मंदिर के अंदर होनी चाहिए।
आई कैन कंसीडर नाउ यू नो दिस इज अ चर्च इज अ टेम्पल यू नो एंड बिफोर कमिंग टू चर्च हाउ माय स्पिरिचुअल लाइफ इज आई वांट टू टेक केयर ऑफ दैट।
और मैं भी इस प्रकार ले सकता हूं कि या हम कलीसिया के रूप में यहां पे इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस मंदिर से पहले मेरा व्यक्तिगत मंदिर यहां पर आने से पहले कैसा है।
नाउ टुडे द होली स्पिरिट हैज given a blueprint and that blueprint is Jesus' life and his footsteps.
और वो नक्शा जो पवित्र आत्मा ने हमको दिया हुआ है वो यीशु मसीह का जीवन या उसके पदचिन्ह हमको दिए गए हैं।
His life is my model life. His footstep I want to walk in it.
और उसका जीवन जो है मेरे लिए जो उसका जो उसके पदचिन्ह है।
In verse 20
उसके 20 वचन में
same chapter chapter 28 David told to Solomon, he will not leave you nor forsake you until you have finished all the work for the service of the house of the Lord.
और वहां लिखा जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना है वह न हो चुके तब तक वह न तो तुझको धोखा देगा और न तुझको त्यागेगा।
In Philippians 1:6 we read that the work which God has created in you he will make sure that he will complete until the day of Jesus Christ.
और फिलिपियों 1:6 में लिखा है कि जो काम उसने भला काम हमारे अंदर आरंभ किया मसीह यीशु के दिन तक उसको जरूर पूरा करेगा।
I believe God has created he had given a desire in in Jonathan's heart, my heart, everybody's heart so that I can worship him, know him and to love him and to serve him.
और जैसे परमेश्वर ने एक इच्छा को हम सभी भाइयों के मन में दिया है ताकि हम उसकी सेवा करें उसको जान सके।
एंड आफ्टर कमिंग द चर्च यू नो वी शुड चेरिश ईच अदर एंड यू नो वी शुड एनकरेज ईच अदर।
और कलीसिया में आने के बाद भी एक दूसरे का मूल्य करें एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें।
बट आई बिलीव दैट इट इज बिफोर यू नो हाउ माई स्पिरिचुअल लाइफ इज विद गॉड।
लेकिन उसके पहले मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है।
नाउ इन चैप्टर 29 वर्स 3
और उसका 29 पहला इतिहास 29 अध्याय का तीसरे वचन को देखें।
It is from the NKJV I am reading. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house.
और वहां पे लिखा है फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया सबसे अधिक अपना निज धन भी जो सोना चांदी मेरे पास अपने परमेश्वर के भवन में दे देता हूँ।
Now you know in one of the translation it read like that. It is because of my devotion to the house of God.
और वहाँ पे लिखा है कि ये परमेश्वर के प्रति जो मेरा समर्पण है उसके कारण।
Yes, it is my devotion to the God, temple. I want to serve. I want to cherish everybody in the church.
और मेरा जो परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है उसके कारण उसके मंदिर के अंदर उसके लोगों के साथ उनकी संगति का मूल्य करूंगा और उनकी सेवा करूंगा।
In verse 9.
उसके 9 वचन में
Then the people rejoiced for they had offered willingly because with a loyal heart, undivided heart, with a single heart they had offered willingly to the Lord and King David also rejoiced greatly.
और तब 9 वचन तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ।
Now you can put Christ instead of David and you can imagine this word that Jesus Christ rejoiced greatly because your single heart.
और यहाँ पर दाऊद की जगह यीशु मसीह का हम नाम लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह का भी हृदय हमारे उस जो समर्पण है उसके कारण बहुत ही आनंदित वो होता है.
इट इज माय जॉय दैट आई वांट टू शेयर समथिंग 10 minutes or 15 minutes एनीथिंग एंड आई वांट टू एटलीस्ट एनकरेज वन अनदर सो दैट यू नो गॉड विल रिजॉइस.
और यहाँ तक कि मैं ये मेरे आनंद के कारण होना चाहिए कि मैं किसी को परमेश्वर के द्वारा मैं प्रोत्साहित करूं तब परमेश्वर उसमें आनंदित होगा.
बट आई वांट टू मेक श्योर दैट हाउ माय हार्ट इज, इट इज सिंगल हार्टेड टुवर्ड्स गॉड और नॉट.
और मैं अपने हृदय को जांचना चाहता हूं कि मेरे हृदय में वो परमेश्वर के प्रति है या नहीं.
इन वर्स 17
17 वचन उसका,
आफ्टर यू नो डेविड प्रेजेस द गॉड गेव द प्रेजेस टू द गॉड ही प्रेड एंड ही सेड दिस वर्स इन 17 आई नो ऑल्सो माई गॉड दैट यू टेस्ट द हार्ट एंड हैव प्लेजर इन अपराइटनेस एज फॉर मी इन द अपराइटनेस ऑफ माई हार्ट आई हैव विलिंगली ऑफर ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ विथ जॉय आई हैव सीन योर पीपल हु आर प्रेजेंट हियर टू ऑफर विलिंगली टू यू.
और 17 वचन है, मेरे परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है, सिधाई से प्रसन्न रहता है, मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई अपनी इच्छा से दिया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं.
नाउ आई कैन इमेजिन यू नो गॉड इज ऑलवेज लुकिंग टू मी हाउ आई ऑफर यू नो जॉयफुली विलिंगली to cherish my church, my temple.
और ऐसे ही परमेश्वर मेरी और इसी प्रकार देखता है कि कैसे मैं आनंद के साथ अपनी इच्छा के साथ मैं अपने आप को उसके कलीसिया के लिए दे देने के लिए तैयार हूँ.
Here it is in I have seen your people who are present here to offer willingly to you.
और यहाँ पे लिखा है कि मैंने तेरी प्रजा और यहाँ पे जो लोग उपस्थित है अपनी इच्छा से यहाँ पर जो लाए उसको मैंने देखा है.
Now you can you know imagine God is always looking like this and he is looking that you know how you offer willingly.
और यहाँ पे जैसे परमेश्वर देख रहा है तो हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हम अपने आप को अपनी इच्छा से उस भेंट को कैसे देते हैं परमेश्वर को.
सो दिस रियली एनकरेज मी यू नो एंड इन 2 Corinthians 11:2-3 विच यू नो जॉन ही शेयर्ड ऑलरेडी
इन 1 Corinthians 11:2-3 उसका 2 और 3 वचन.
इन वन ऑफ द ट्रांसलेशन इट रेड लाइक दिस, इट लाइक यू नो unspoiled girl you know betrothed to the husband it's like before marriage we say a fiancé.
और जैसे एक मंगेतर है जो एक लड़की जो है जो एक लड़के को दी जाती है विवाह करने के लिए,
which is a single hearted to that husband which you know and he will not look after another but just devoted to that husband.
और जैसे वो एक लड़की जो मंगेतर है अपने उस पति जिसको विवाह होने है पूर्ण हृदय के साथ एक ही हृदय के साथ उसके प्रति समर्पित रहेगी, किसी और बारे में नहीं सोचेगी.
बट इफ ही लुक टू अनदर हस्बैंड What we call.
और अगर वो लड़की किसी और लड़के की तरफ देखती है मंगनी होने के बाद तो उसको हम क्या कहेंगे?
It's an adulterous heart.
तो वो हम व्यभिचारी हृदय कहेंगे उसको.
Ezekiel 6:9
उसका 6:9 Ezekiel उसका 6:9
Then the house of you who escape will remember me among the nations where they are carried captive because I was crushed by their adulterous heart which has departed from me and by their eyes which play the harlot after their idols.
और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करो यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया.
नेक्स्ट,
और व्यभिचारिणी किसी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है.
सो आई थिंक दिस इज माई यू नो गॉड इज टेलिंग मी एंड थ्रू ऑल ऑफ अस दैट की वी शुड पुट अनडिवाइडेड हार्ट टुवर्ड्स गॉड, वी शुड विलिंगली सर्व हिम विद अ लॉयल हार्ट.
और इससे मुझे परमेश्वर बात कर जैसे कहता है प्रोत्साहित करता है कि हमें पूरी तरह से पूर्ण इच्छा के साथ किसी भी हमारे ध्यान या उसको भंग किए बिना ईमानदारी के साथ उसकी हमको सेवा करना है.
There is one example which is written in the Bible.
और एक उदाहरण है बाइबल में उसके बारे में.
Matthew 19
उसका 19 अध्याय.
When Jesus was counseling to the rich young ruler,
वो वहां पर जो है जो बहुत ही जो धनी जो जवान वो वहां पर था उससे बात कर रहा था.
Verse 16
16 वचन में,
यू नो ही आस्क लॉर्ड जीसस दैट लॉर्ड हाउ कैन आई गेट अ गुड लाइफ एवरलास्टिंग लाइफ.
16 वचन में कहता है कि गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं.
व्हेन जीसस काउंसल हिम डू दिस एंड जीसस टोल्ड इन चैप्टर 21 इफ यू वांट टू बी परफेक्ट गो सेल व्हाट यू हैव एंड गिव टू द पुअर एंड यू विल हैव द ट्रेजर इन हेवन एंड कम फॉलो मी.
और 21 वचन में कहता है यीशु मसीह बहुत सारी चीजें उसको कहता है और वो सब कुछ कहता है। यीशु बाद में कहता है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे मुझे स्वर्ग और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले।
ट्रीजर इन हेवन एंड ट्रीजर ऑन अर्थ His mind, you know, he was confused what to choose.
और वहाँ पर दो प्रकार के धन थे, एक स्वर्गीय धन और एक संसार का, पृथ्वी का धन। वो बहुत ही confused हो गए कौन सा चुनना है।
But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had a great possessions.
और 22 वचन में लिखा है जब जवान ने इस बात को सुना तो बड़ा उदास होकर चले गया क्योंकि वो बहुत ही धनवान था।
I never saw any example in the Bible which is mentioned that someone came to Jesus and he went away sorrowful.
और यहाँ पे पहली बार मैंने बहुत ही कम या ऐसा उदाहरण देखा नहीं कि जहाँ यीशु मसीह के पास कोई व्यक्ति आता है और उदास होकर यीशु मसीह के पास से चला जाता है।
Because of his undivided heart.
क्योंकि उसका जो मन है पूरी तरह से जो भंग किया गया है, उसका समर्पित पूरा नहीं है परमेश्वर के प्रति।
The greatest treasure on the you know heaven was in front of him, the Jesus Christ.
और उसका जो सबसे बड़ा जो प्रतिफल या उसका जो संपत्ति है वो यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था।
बट ही चोज अर्थली थिंग्स।
लेकिन उसने जो पार्थिव जो संसारिक चीज जो पृथ्वी की उसने उसको चुना।
यू नो थॉट्स चेंज यू नो मेनी टाइम्स दैट्स व्हाई यू नो डेविड इन द चैप्टर 29 वी कैन गो इन वर्स 18
और पहला कुरिन्थी 29 इतिहास के अंदर जैसे दाऊद कहता है
चैप्टर 29 वर्स 18
29 का 18
वन क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 18 O Lord God of Abraham, Isaac and Israel, our fathers, keep this forever in the intent of the thoughts of the heart of your people and fix their heart toward you and give my Solomon a loyal heart to keep your commandment and your testimonies and your statutes to do all these things and to build the temple for which I have made provision.
और हे यहोवा हमारे पुरखा इब्राहिम इसहाक इसराइल के परमेश्वर अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख उनके मन अपनी ओर लगाए रख मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञा और चितौनियों विधियों को मानता रहे सब कुछ वह करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है।
इन वन ऑफ द ट्रांसलेशन इन लिविंग बाइबल इट सेज लाइक लॉर्ड मेक श्योर दैट देयर लव फॉर यू नेवर चेंज।
और वहां पे वो कहते हैं कि प्रभु होने दे तू ऐसा कर कि प्रभु उनका प्रेम जो तेरे प्रति परमेश्वर कभी बदले नहीं।
May God help us that keep this thought in your mind that Lord for you my love will never change.
और यही हमारे मन में हमेशा हम रखें कि प्रभु मेरा प्रेम तेरे प्रति कभी भी बदले नहीं।
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करें।
I was blessed to hear many young brothers. John 15. Gospel of John 15 verse 17. This I command you that you love one another. So this one command Jesus gave us to love one another. You know. And I was reading something yesterday and these couple of chapters and this commandment was said because Jesus himself loved everyone on this earth. And there was no room in Jesus' life for, for hating someone or, a grudge against someone. Otherwise, he wouldn't give his life for all of us. And I was reading chapter 13, John 13 verse 1. The second part of it. I'll read the entire verse. Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he should depart out of his world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. So while reading this, I just meditated on this verse and I thought to myself, even till the same people who put him on the cross of Calvary, he loved them to the end. He loved his disciples to the end. He loved his family to the end. And that is something encouraging for me, you know, to love each and every brother and sister to the end of my life. And in my life, if I have a slight grudge or hatred towards anyone, I will never, you know, fulfill this verse in chapter 15, which Jesus has given one command, that is to love one another. And it's an inspiration, it's a example for me from Jesus' life to love someone till the end. And also in verse 34, it says, a new commandment I give to you that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. So it's a commandment for all of us, for me to love someone or love everyone till the end of my life. No matter what, everyone has some faults, some downfalls,
Someone has done something to you, but there's no room for hatred or grudge towards that person. It's just simple to, you know, love someone, love that person till the end of my life.
मेरा जिंदगी में मैं देख रहा था कि मैं खुशी के मौके में प्रभु को छोड़ के जाता है, तो मैं वही देख रहा था कि वो सैलरी सब प्रॉब्लम था, तभी बहुत पिछड़ों के सब साथ में ही था, सैलरी सब मिल गया तो प्रभु के छोड़ के गया पूरा, और फिल्म्स वगैरह देख रहा था, आराम से बैठा था, तो इट वॉज नॉट गुड। वो प्रभु भी नहीं चाहता था कि हम लोग वर्ल्डली ऐसा नहीं चलना चाहता है प्रभु। तो दो तीन बार मैं वापस आया, फिर भी मेरा खुद का, अभी आज जो बोल रहा था, मेरा खुद का शक्ति से, मेरा खुद का इसमें से प्रभु का साथ में चलेगा चलेगा बोल के मैं देख रहा था, पर वो नहीं हो रहा था। फिर मैं शायद छोड़ दिया, फिर मैं ऐसा ही पूरा टाइम प्रार्थना नहीं कुछ नहीं ऐसा ही जा रहा था। फिर दो हफ्ते पहले मेरे को अचानक मलेरिया आ गया, उसी टाइम पे केरला से फ़ोन आया कि मेरे को 9:45 को मलेरिया है करके रिपोर्ट मिला, 10 o'clock को ज्योति फ़ोन करके बोला मेरा बेटी को चिकन पॉक्स हो गया, सो दोनों एक साथ में आ गया। तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये प्रभु का ही काम है, प्रभु मेरे को ऐसा ज़िंदगी जीना नहीं चाहता है, तुम वापस आ जाओ करके। फिर मैं प्रभु से रो रहा था, प्रभु मेरे को इस बीमारी से बचाओ करके। प्रभु ने मेरे को बहुत सहायता किया, मेरे को इतना कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, मैं घर पे ही बैठा, मैंने गोली खाया, सब ठीक हो गया। तो प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमको जब भी मैं गलत रास्ते से आता है, प्रभु मुझे वापस लेके आना चाहता है। वो मुझे फिर से प्रभु ने मुझे याद दिलाया, एफेशियंस में वजन में लिखा है कि ऐसा, फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि पॉल हमारे लिए प्रार्थना करता है कि मैं ये चाहता है कि उन लोगों के वो आत्मा खुल जाए, कि ये लोग समझ सके प्रभु क्या चाहता है, प्रभु जो कलिशा में जो है उन लोगों के लिए क्या रखा है। एक्चुअली ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, इसके लिए ये वापस मैं कुत्ता जैसा, ऐसा जो छोड़ दिया उसके पीछे पिक जैसा ऐसा ही जा रहे हैं। तो अभी मैं ये समझना चाहता हूँ कि प्रभु मेरे लिए क्या रखा है, वो मेरे को समझ में आएगा, पर वो मेरा ताकत से नहीं होएगा। वो ही आज सब लोग बात कर रहे, तो मेरे तो वो फिर से मेरे से प्रभु वो मेरे को ये कर रहा था कि वो तुम्हारा खुद का ताकत से तुमको कुछ भी समझने को नहीं होएगा, एक बच्चा जैसा हमको प्रभु के साथ आना चाहिए, तो ही प्रभु वो समझा देगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है और उस हिसाब से जीने का है। मैं भी वही चाहता हूँ, कभी भी कलीसिया मेरे साथ में थे, मेरा जब भी प्रॉब्लम हुआ, मेरा आंतरिक जीवन किसी को भी मालूम नहीं, पर हमेशा मेरे लिए प्रार्थना किया। कल एक्चुअली मेरा जिधर मैं काम करता हूँ उधर एक आदमी मलेरिया की वजह से आया था, वो उसका एकदम भयानक सिचुएशन था, उसका क्या क्या हो गया भाई, एक्चुअली मुझे भी मलेरिया, पर मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था, गॉड का फेवर है, हमारा प्रभु थोड़ा कुछ शिक्षण देता है, फिर भी प्रभु मेरे को बहुत संभाला। मैं मलेरिया रह के भी मैं ड्यूटी पे गया, मेरे को जितना ड्यूटी एक महीने में कंप्लीट करना चाहिए था उतना ड्यूटी मैं कंप्लीट कर पाया। सो प्रभु बहुत ख्याल रखता है, प्रभु हमारा पिताजी बहुत ख्याल रखता है, हम लोग पाप करता है वो एकदम क्रोध है, उनको पाप पसंद नहीं है, हम लोग वो छोड़ के जाता है प्रभु का मन में वो हम नहीं करना प्रभु चाहता है। तो इसके लिए प्रभु एक पिताजी जैसा तुम नहीं जाना चाहिए करके मेरे को रुका दिया, उसी टाइम पे मेरा सब इसका ख्याल रखा, परिवार में भी बच्चा भी ठीक हो गया उसी टाइम पे, बहुत सारा मतलब हेल्प के लिए भी बहुत सारा लोग आया। सो प्रभु हमारा पिताजी है, वो पिताजी है, वो एक ही टाइम पे हमको प्यार करता है, उसी टाइम पे प्रभु हमको सीधा तरीके में लेके जाने के लिए जो करने का है एक पिताजी उसी हिसाब से करता भी है। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों के लिए, मेरा और मेरा परिवार का आप फिर से प्रार्थना में देखिए।
Okay, like the life of Joseph in Genesis is very, you know, encouraging and interesting. And in all cases, like whether we are discouraged or God's promises or many things. One thing which I found very interesting was like when he was 17 years old, something like that, 16 to 17 years old, he gets a dream. And I don't know, maybe because of his innocence, he says to his brothers that this is my dream, and they get offended and they sell him, and like that's the dream which he got, and God fulfilled that dream like maybe after 22 years, like or 22 years, like when he was 37 or 38, God fulfilled the dream. So that was something interesting to see, and the days from his 17 years to 30 years was not very easy. One thing what I found very interesting was when Potiphar's wife accused him of this adulterous act, and then we see that he's been put in jail. But what I assume is, like, in those days, when a person is being accused of adultery or found an adulterous act or something like that, there was capital punishment. But God was so merciful enough to show to Joseph that he didn't give capital punishment. He put him in jail, and through he shows a way. So even though we are in troubles and trials and things, God has his plans, and he will always protect us. He corrects us, he protects us. And the best verse which I like told by Joseph is this in Genesis chapter 45 verse 6 and 7. He says, "For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve you for a remnant on earth and to save your life by great deliverance." This I understand is even an act of simplicity or humility, but even then it's an act, it's a real thing. Like God actually put him in such tough situations so that he becomes the chief person in Egypt. Or had his brother not sold him, then Joseph would have not gone there, and when there was famine, the entire Israel would have gone, you know, it would be a very tough time. That's unimaginable. So what I understand is God puts everybody in these troubled situations, you know, to correct us or, you know, to help others. Thanks.
I thank God for giving this wonderful Sunday. I would like to share something that I learned from my life, especially how to be thankful to the Lord. In Ephesians 5:20, it says that, "And give thanks for everything to God the Father in name of our Lord Jesus Christ." I understood that thankfulness is not really praising Lord and saying Him thanks for all the good he have done. One way of showing gratitude and thankfulness to Lord is giving our best in what God has given us, or sincerely doing something that he has charged us. Sometimes it may be in our job or education. Our job or education we are having is not because of our strength or will, but it's all because of the grace or blessings that God have given us. I just imagine a situation that suppose a father is giving something or charging a responsibility to a son. Suppose if that son truly loves and respects that father, he will try to impress the father by doing that responsibility with all his best. Sometimes we may have to do work that like that not a standard or like standard as our education and qualifications, or sometimes we may fail even if we work so hard for that. This may be because Lord may want to see our heart in that such situation, whether we are thankful or we keep our murmuring despite of other good things and blessings that God have given in our life. In Luke chapter 16 verse 10 we can see that whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonored with very little will also be dishonored with much. The other thing I understood that if you are not thankful to the Lord, it can lead to other sins like especially pride and all. When we are reading, going through Romans 1, 21 onwards, we can see that one of the reason for that lead to other sin is like that unthankfulness. Thanks.
Today there are a lot of stories. I will also tell one story. It was from a book that I'm reading now, and that really helped me, this story. So the book is written by an author named Hannah Whittall Smith, and she tells an incident where another woman met her and told her that that she is finding very difficult to give up herself to God's will. She is telling that I want to give up myself completely to God's will, but there is always a fear that something will go wrong. Something bad will happen in my life. Maybe God will, you know, make me go through stuff that I hate. And maybe it will ruin my joy and I may not be able to enjoy life afterwards. So she was having all these emotions, and she was not able to give herself freely to God, saying that, God, you take all of me. And this lady, Hannah, told her something. The other woman had a child, a son named Charles. She told her that, look, if today Charles comes to you and says to you that, Mom, from today onwards, I listen to you, and each and every word you say, I will do exactly as you say. From today onwards till the end of my life, whatever you want me to do, I will do. And whatever you say, I won't say anything against you. I will not question you. And I will do exactly as you say till the end of my life. So here I am, Mom. You can teach me, tell me whatever you want. And this Hannah asked her, so when Charles says something like this to you, so as soon as he says to you, you start thinking that, what are the ways that I can ruin Charles' life? What are the ways that I can make Charles do something he hates, so that he'll feel miserable? You know, what are the things that I can do that makes Charles feel that very bad about himself, and he never grows? Will you do that? She asked, and she was about to cry, and she told, I would never do that. If Charles says something like this to me, that means that a huge responsibility is on me to make sure that Charles gets the best in this life. And, you know, he finds the best person for his partner. He finds the best job. And he finds something which is best suited for him. And I'll make sure, you know, with all my strength, that Charles is very, very happy. So she told that, do you think that God is, worse than you? Then she realized that, if I, a sinner, can love my son like this, how much God will, take care of us if we just surrender. That really helped me to, give up to God. You must have seen when you go in railway stations and all, any other public place. I was seeing yesterday. So you've seen people who look very rough. You know that they are unbeliever. They may be very hateful. You can see it in the face that they are very rough. But if you see how they hold their children and how their children sleep on them, you know that whatever, however bad they are, with their children, they are so, committed that they should be happy. And the children rest on them freely. They're not afraid of them. If sinners like us can love, our children like this, how much God, will go do to us if we just give ourselves freely to Him. This was very helpful. Thanks.
मुझे जिस चीज़ पे बात करना है वो बहुत सिंपल है, और लेकिन मेरे हिसाब से वो 10 या 20 टाइम्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, वो है प्रेयर, कि प्रेयर हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए. तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसका जो राइटर है उसका बैकग्राउंड एक मुस्लिम बैकग्राउंड है, और बाद में वो जीसस उसको मिलते हैं, तो वो नमाज के बारे में बता रहे थे. तो मुस्लिम्स 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम सबको मालूम होगा, लेकिन बहुत कम जानते होंगे कि वो 5 नमाज के पीछे रीज़न क्या है, कि उन लोग 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं. तो उस बुक में लिखा था कि 5 बार नमाज उन लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो खुद को क्लीन करते हैं हर बार, तो ये रीज़न रहता है 5 बार नमाज पढ़ने का, कि नमाज पहला पढ़ेंगे खुद को, उसके पहले जो भी उन्होंने पाप किया रहेगा उसे क्लीन कर लिया खुद को. फिर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड नमाज के बीच में अगर कुछ उन्होंने किया है तो सेकंड नमाज में वो खुद को क्लीन कर लेंगे. तो मैं सोच रहा था अगर ऐसी बात है तो मुझे हर सेकंड फिर प्रे करते रहना पड़ेगा. और फिर मैं वर्ड्स पढ़ रहा था तो उसमें Matthew 26:41 उधर लिखा है, कीप वॉच एंड प्रे सो दैट यू विल नॉट गिव इन टू टेम्पटेशन, फॉर स्पिरिट इज विलिंग बट द बॉडी इज वीक. तो कई बार मेरे साथ भी होता है, मेरे अंदर से तो होता है कि प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, लेकिन बॉडी इतना वीक है और मैं बहुत लेजी हूँ, बहुत आलसी हूँ मैं, मुझे सुबह उठने नहीं होता, और फिर अगर उठ गया तो लेट उठाऊँ तो फिर कॉलेज जाना है, तो उसके घाई में प्रेयर नहीं करता हूँ. और कभी जल्दी उठ गया तो फिर कई बार ऐसे होता है कि जल्दी उठने के बाद भी मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूँ, तो ये एक बहुत खराब चीज़ है. फिर एक और वर्स है जहाँ पे लिखा है 1 Thessalonians 5:17 नेवर स्टॉप प्रेइंग. तो बाइबल भी हमसे बताती है कि हमारे लाइफ में प्रेयर का कितना इंपॉर्टेंस है. और सैमुअल एक बार कहते हैं कि First Samuel 12:23 लिखा है, एज फॉर मी आई विल सर्टनली नॉट सिन अगेंस्ट लॉर्ड बाई एंडिंग माई प्रेयर्स फॉर यू. सैमुअल यहाँ पे इसराइल से बात कर रहे हैं, यहाँ इसराइल से. तो मेरे हिसाब से प्रेयर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कि हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर करना है. अगर हम एक दूसरे के लिए भी नहीं कर रहे हैं तो वो एक सिन है. और एक सिन, अब मेरे लाइफ में सिन के लिए भी अलग अलग एक वेट था पहले, अब नहीं. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए सिन का जो सब सेम हो. पहले अगर गॉसिप किया कम वेट, झूठ बोला ज़्यादा वेट, तो वैसे मेरे लाइफ में था. लेकिन गॉड मुझे सिखा रहे हैं कि छोटा हो बड़ा हो सिन सिन होता है. तो वैसे यहाँ पे भी लिखा है, अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ तो गॉड के अगेंस्ट में वो भी एक पाप है. तो अभी ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करो. अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिन है. और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँ.
सो लास्ट वीक यू नो आई वाज आई मीन फ्यू मंथ्स अगो यू नो आई वाज ट्राइंग टू डिसिप्लिन माय सेल्फ यू नो बिकॉज my life was you know undisciplined, you know everything was totally different from you know everyone. So I was trying to discipline myself as an I was trying to discipline myself to get up early in the morning, because you know I'm a night owl, like you know I can sit at the night around 4-5. Then you know I'm not an early riser, so last week I was it was a very struggling and very surprising week actually last week, because you know one of my cousin's friend, she want to come to my place because I'm living alone right now. Suddenly she called me and, you know, she said, you know, Didi, I'm coming to your place. But, you know, I was living alone, so my house was like full of mess, because, you know, I throw my clothes this way, that way, you know, one side is the whole books and the other side is like chocolates and all, everything was a mess. And I was working that time, like, you know, so I I mean, thankfully I got a half day. So after coming back, you know, I told her, you know, see, before getting into house, my house, you know, I'm telling you that it is a really mess. You cannot imagine how mess is. So she was saying, no, Didi, it's okay, I can. And once I opened the door, she was like, really? I mean, you know, she was shocked. So, and that day I was not feeling well because I had severe back pain and all, you know, I don't know. I was like, you know, crying, you know, I want to just lie down my bed and I don't want to do anything. But she was there right before, I mean, beside me. And I started doing the whole thing, you know, from 1:30 to till I think 4-5 o'clock, you know, I was like cleaning and arranging my everything, you know, folding clothes and everything. So I was so tired, you know, I didn't have my breakfast, lunch, nothing. And, you know, I was very hectic and I want to scream, you know, I want to cry, you know, I want to show my anger. But I couldn't because, you know, she's a new girl and I didn't know. I mean, for the first time I'm meeting her. I didn't had a word before. I didn't talk to her, anything, nothing. And so I was very upset. I mean, I don't know you. So what to do? I was like, you know, God, give me the grace. You know, give me the grace. So I don't want to cry or I don't want to shout. You know, I don't want to be anything that, you know, she's the girl, you know, she need my help because, you know, she was going for the exam and also she needs someone's help. And, you know, I'm in a situation that, you know, I need someone help. So I told God, you know, God, give me the grace so at least I can do my thing. You know, without you, I cannot do anything. So I clean everything, you know, I made coffee and all. And she said, okay, Didi, you can take rest. So I had to wash my clothes, you know. So I put my clothes in washing machines and between she want to go to the loo. So I opened the door and said, okay, you can go. But the pipe was, you know, outside that time. So I didn't see that. And I was cooking rice and curry and all, chicken curry I was making that time. So I was cooking and, you know, suddenly was, you know, I feel some water there. So I was like, and I thought it is on the only in the kitchen. So I was going there and, you know, I put back to the pipe and all. And it was the whole house was full of water that time. And I don't know what to do. I was like, you know, God, this is something, you know, I didn't expect. You know, I clean everything and I do my whole thing and this is something, you know, I couldn't. And I started clearing again the whole thing, you know. There was a 2 bucket of water. There were, you know, cleaning, wiping. And that time I had severe pain. I was like, God, I don't want to do this. You know, I don't want to. I started crying inside, but I couldn't, you know. She was like, you know, Didi, I'm sorry because of me, you know. I said, okay, it's okay, but I can't do. And I don't want to scream to her, you know. I don't want to scold her, like, you know, because of you, you know. I didn't plan, you know, someone was coming to my house, you know. Suddenly everything was, you know, changing because earlier I stay alone, you know, I was like, you know, my own plans and, you know, my own. Even if I feel like eating or reading or studying, I do my own. But when someone is next to you, you have to do. You know, your willing is like, you know, you don't want to do. But because of other person, you are supposed to do and to do all the things. And that day, as I thank God for me teaching me a new lesson because it was my worst situation, but I learned that, you know, you cannot expect every time something good happen to your life or, you know, you are expected to be something, you know, I mean, something you don't want to do. Like, you know, your life is as mysterious, you know, sometimes it's good happen, bad happen. It's not in our hand, it's on God's hand. So that was very 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 good lesson. And one more thing I learned from her, like, you know, she used to wake up at around 5:30 in the morning and started reading Bible and praying, like, you know, 1 hour. And I was full of surprise, you know. I never used to wake up at 5:30 and do not read Bible and all. And she And evening, you know, around 8:30 or 9, she again used to read Bible. I mean, she is in an RC. And she again used to read Bible and started praying. I was really surprised because, you know, I am not that kind of person who read every day Bible or who pray. I mean, I pray every day, but I don't read Bible every day. I always used to read not every day, alternative day. So I learned from her so many things, and the last week was full of surprise, and thank God for teaching me to discipline myself as a good way, because I need that discipline. I always used to pray, God, please show something that I want to be disciplined, because that discipline was lacking my life, because every time I used to I had a habit of this doing myself as Dilna. I used to define every word. So D4 is dullness. I always used to D4. So now I started D4. It's Dilna. I4 this, I4 used to be, integral, or and L4 is lovable. I used to make this. And before I used to make L4... lazy, and N for not aiming everything. So this was my story, because I didn't prepare anything, but suddenly I want to tell that my life was something very good last week. Thank God. Thank you so much.
I really thank God for what we heard. It was really encouraging to hear so much from so many brothers and sisters. So I just wanted to share what God is teaching me now. Exodus 14:14. So here the verse says, "The Lord will fight for you while you keep silent." So this is what God is teaching me, this moment, I can say. There are so many things that happens in our life, being a in youth or being a believer. Sometimes our problem seems very bigger than our God. If we read the verse before that, we can see where the Israelites are having no way to escape, and they were complaining to Moses that, "Did you bring us here for us to die in the wilderness?" So even in my life, I had such situation where I had no way to escape, and was using my human intelligence and my own strength to come out of it. We have been hearing here so many times that we need to be dependent on God, but I did not see that implication in my life. Hearing it from someone and when God makes you realize that is a two different thing. So this is something that God is teaching me now, that no matter what, how big my problem is, I need to just be dependent on Him. He will fight for me. I need to just put my trust on Him, be patient, and He will work for me. There's one woman that I always meditate on in Bible, that is Ruth. I always relate myself to her, because though I was born in a Christian family, I never knew the true God. So she's someone coming from a heathen family, glorified God in her life. She was an example. So that is an inspiration that I take from her. She waited for God. She had a choice to either go away on her own or to be with her mother-in-law and to do what God wanted her to do. And God did honor her for that. So this is something that I learned for myself, that if I honor God in my life, if I wait for His plan, He will honor me. That's it. Thank you.
प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. सच में आज की शेयरिंग से मुझे बहुत आशीष मिली. और आज जो फर्स्ट सॉन्ग हमने गाया, दैट गॉड इज़ बिगर देन ऑल आर फियर, गॉड इज़ बिगर देन ऑल आर क्वेश्चंस. तो पिछले दिनों मैं भी इस कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रही थी. बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे थे, बहुत सारी फीलिंग्स, अलग ही चीजों से मैं गुजर रही थी. मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था और इट वॉज ऑल टूगेदर वेरी डिफरेंट. एंड समटाइम आई वॉज रियली डिसहार्डन एंड क्राइंग बिफोर गॉड एंड फीलिंग वेरी डिस्करेज. एंड गॉड जस्ट रिमाइंडेड मी वन थिंग, दैट ही इज अ लविंग फादर एंड ही इज अ गुड गॉड. एंड I should never doubt his plan, and I don't need to understand everything. I just need to trust him that yes, he's a loving father. जैसे अभी एक भाई ने शेयर किया कि वो पिता वो लोग जो कितने बुरे होते हैं फिर भी अपने बच्चे को कितना केयरफुली हैंडल करते हैं, तो क्या वो प्रभु जो हमसे इतना प्यार करता है क्या वो हमारे लिए कभी कोई गलत प्लानिंग करेगा? उसकी हर एक चीज हमारे लिए बेहतर होती है. आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई जस्ट नीड टू ट्रस्ट गॉड एंड आई शुड ऑलवेज पुट जीसस बिफोर मी एंड नो दैट ही इज अ लविंग फादर. दिस इज व्हाट गॉड टॉट मी. एंड एक और वचन मैं शेयर करना चाहूंगी, जॉब चैप्टर 14 वर्स 7, इसमें लिखा है कि वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वे काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी. चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वे फिर पनपेगा और पौधे के समान उसमें शाखाएं फूटेंगी. तो इसमें लिखा है कि एक वृक्ष के लिए आ जाए, चाहे वो काट डाला जाए, पूरी तरह से खत्म भी हो जाए, फिर भी जब वर्षा, जो प्रभु का प्यार है, प्रभु की दया जब उस पर पड़ेगी तो वो फिर से पनपेगा. तो मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं भी उस वृक्ष के समान हूं जो पूरी तरीके से कट चुका होगा, भले ही हमारी सिचुएशन या किसी भी हालात में हम उस टूटे हुए पेड़ की तरह है जिसकी सिर्फ एक थोड़ी सी ही डाली बची है, बट जब प्रभु की दया और प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में आएगा तो फिर हम उस पौधे के समान बनेंगे जहाँ पे सच में वो शाखाएं होंगी और वो दूसरों के लिए भी आशीष बनेगी. आमीन.